ओम शांति। कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा हो रहा है? सभी मौन में हैं? और अभी विशेष तपस्या किसको कहते हैं ना, तो शक्तिशाली योग तपस्या जैसे आपको बताया था, उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता बहन जी हमें स्पष्ट करेंगे। आप सभी वैसे तो पुराने बाबा के बच्चे है ही, पर फिर भी है ना, बाबा कहते हैं ना कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, शक्तिशाली योग तपस्या करनी है, तो उसके लिए हमें बताएंगे। वैसे तो गीता बहन जी को आप सभी जानते ही हैं, सभी जानते होंगे है ना, जो नहीं जानते वो हाथ ऊपर करे। देखो बहुत कम लोग है जो नहीं जानते, सभी जानते ही है। गीता बहन बहुत छोटी आयु से, समझिए बचपन से ही बाबा के ज्ञान में है। एजुकेशन में शी इज गोल्ड मेडलिस्ट, वैसे तो HSC में, परंतु वहां उस समय वो बहुत फर्स्ट नंबर स्टेट में आए हुए थे। बाबा की सेवा में समर्पित हुए हैं बहुत सालों से, गुजरात की सेवा किया है, उसके बाद ज्ञान सरोवर में कई सालों तक बहुत जिम्मेवारी से अपनी सेवा प्रदान किया है, और अभी बाबा की आवश्यकता पर शांतिवन के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैकल्टी के रूप में आप सेवा देते हैं। हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर भट्टी के ग्रुप के अंदर आपका विशेष क्लास, आपके कई विषयों पर विशेष क्लास रहते हैं। आप बिजनेस विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आज हमें विशेष तपस्या के विषय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। ओम शांति। साथ साथ मैं बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ, गीता बहन जी का भी तिलक से स्वागत करेंगे, और आप सभी एक हाथ हिला करके बहन जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि पर आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है बाप दादा की कर्म भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि, वहां तपस्या करने के लिए आने का मौका मिला है। इस भूमि के कण कण में बाबा की याद, ५९५० में यज्ञ भारत में आया और माउंट आबू के विभिन्न स्थानों में रहने के बाद यहां स्थायी हो गए। ब्रिज कोठी में, कोटा हाउस में, धौलपुर हाउस में, और ये पोखरान हाउस, ये राजस्थान के राजाओं के महल थे, और उस समय ही ये खाली पड़े थे। तो बाबा ने सेवा के लिए रखा। हम सभी बाबा के बच्चों का भी फेवरेट प्रोग्राम भट्टी का ही होता है। अच्छा लगता है कि सभी बातों से फारिग होकर, निश्चिंत होकर, साइलेंस में रहकर स्वयं को देखें और बाबा से बात करें। वहां तो अपने घर में रहते हैं तो क्लास के लिए टाइम निकालते हैं, बाकी खास फ्री होकर बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि आप सभी डबल रोल में हैं, लौकिक भी संभालना है और अलौकिक भी संभालना है। तो ब्राह्मण जीवन में ये एक ख्वाहिश रहती है कि फ्री होकर के, है ना, दिल से तपस्या करे कुछ। तो ये मौका सबको मिला है। हम सब जानते हैं कि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, सब कुछ समझाया है, जीवन की स्थूल सूक्ष्म साधारण छोटी बातों से लेकर बड़ी ऊंची महीन गहरी बातें बाबा ने हमें बताई हैं। तो ज्ञान खोजने की बात नहीं रही, है ना, स्वयं भगवान ने, सागर ने पूरा ही ज्ञान हमारे आगे रख दिया है। शास्त्रों में जो गायन है कि सागर, है ना, ऐसा चित्र देखा होगा ना कि समुद्र से हाथ निकलते हैं और रत्नों से थालियां भर भर कर देता है। तो ये बाबा ही ज्ञान का सागर है जो पिछले 78 वर्षों से, है ना, जब से भगवान सृष्टि पर आए ज्ञान देना शुरू किया। इसलिए हम कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि बाबा आते ही ज्ञान देना शुरू करते। तो सच में बाबा ने मूल सत्य बातें हमें बताई, अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातें बताई, प्रैक्टिकल जीवन धारणा की बातें बताई, हर बात बताई है। ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने ना समझाई हो। आपको क्या लगता है, ये सही है? हाँ, मैं जो कह रही हूं उससे सहमत हैं आप? ना एक बार, लेकिन बार बार, अनेक बार, अनगिनत बार बाबा ने समझाए और नए नए तरीके से समझाए, नए नए तरीके से बाबा ने समझाए। भगवान सिर्फ सुनाता नहीं है, समझाता है, है ना? भक्ति में लोग कथा सुनाते हैं पर बाबा हमें समझाते हैं। तो हमें स्पष्ट है कि हम कौन हैं, बाबा कौन है, और अब हमें अपने मन बुद्धि और तन मन धन किसमें लगाना चाहिए, है ना? समझ है हम सबको, क्योंकि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या आवश्यक है, क्या व्यर्थ है, हम समझते हैं। और हम सब ने निर्णय भी ले लिया है कि जो सही है वही हमें जीवन में करना है, जो गलत है वो नहीं ही करना है। योगी उसे ही कहते हैं जो करना चाहिए वो ही वो करें और जो न करना चाहिए वो नहीं ही करें। ऐसा जिनका अपने मन बुद्धि संस्कार पर और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, संयम है, उसे ही योगी कहते हैं। वो योगी का परिचय है। और हम सब बाबा के बच्चे ये भी जानते हैं कि ड्रामा में एक ही बार संगम युग में ऐसा बनने का ज्ञान और मौका मिलता है, क्योंकि बनाने वाला खुद बाबा आता है। और युग में हम चाहें तो भी नहीं बन सकते। द्वापर युग से भक्ति में आत्मा की ये गहरी इच्छा थी कि विकारों से मुक्त हो जाए। इसलिए आप देखो, जो प्राचीन पक्के सच्चे भक्त हो गए, उनके भजनों में आरती में भगवान को यही रिक्वेस्ट है। ये तो आजकल के जो भक्त है वो अल्पकाल की इच्छाएं प्राप्तियां उसी के लिए सिर्फ भक्ति करते है ना, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये चाहना पूरी। प्राचीन पुराने भक्तों में ये चीज नहीं। इसलिए वो जो शुरू के आरती भजन है, काव्य है, उसमें आपको यही दिखेगा जो वो बार बार भगवान को कहते हैं कि हमें विषय विकारों से छुड़ाओ, है ना, हमें मुक्ति दो, हमें पापों से छुड़ाओ। माने आत्मा की ये लगन रही है कि मुझे पवित्र बनना है, विकारों से छूटना है। तो भक्ति में तीव्र इच्छा थी, मेहनत भी थी, है ना, कितना कष्ट सहते हैं, कितने व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। अब शायद घूमने का लक्ष्य होता है, पर पहले के जो भक्त है उनकी तो भावना रहती थी, भगवान मिले, दर्शन करें, पावन बने, है ना? कितने कठिन हट क्रियाएं करते थे, व्रत उपवास करते थे, माना मेहनत भी की। पर तीन चीज नहीं थी। एक तो सही ज्ञान नहीं था, ज्ञान सही नहीं था, भक्ति में ज्ञान सही नहीं था। दूसरा, गाइड सही नहीं था, कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला, हो ही नहीं सकता था, तो कोई गाइड सही नहीं था। और तीसरी बात कि समय ही उतरती कला का था, समय ही उतरती कला का था, इसलिए कुछ भी किया पर उतरते ही गए। अब संगम युग में स्वयं भगवान हमारा गाइड है, है ना? वो मार्गदर्शन दे रहा है क्या योग करना है, क्या तपस्या करनी है, क्या पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सत्य है, है ना, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और समय, संगम का समय, चढ़ती कला का समय, उड़ती कला का समय, नदी का प्रवाह जिस दिशा में चले उस तरफ नैया को ले जाना सहज है, प्रवाह के विपरीत जाना मेहनत है। द्वापर में मेहनत थी क्योंकि प्रवाह उतरती कला का और हम चढ़ने की मेहनत कर। ज्ञान सत्य मिला है, ये तीनों बातें अभी हैं, पर मुख्य बात मेरा लक्ष्य क्या है अब ये है कि मेरी इच्छा क्या है। पूछो अपने आप से, मेरी इच्छा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वो तीव्र लगन है कि मुझे पूरा योगी बनना है, तपस्वी बनना है, भगवान की आज्ञा पर चलना है, मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ये मेरा जिगरी लक्ष्य और इच्छा है। ये रोज अपने आप से पूछना है और रोज खुद को पक्का कराना है। परख लिया, निर्णय भी हम सब ने कर लिया है, हम चल भी रहे हैं, पर समय की मार्जिन देखते हुए कि समय थोड़ा है और मंजिल बहुत ऊंची है, उस हिसाब से बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो मेरी इच्छा क्या है, जैसा पुरुषार्थ मेरा चल रहा है वही ठीक है, या समय को देखते हुए बाबा जो कहता है ऐसा तीव्र पुरुषार्थ मुझे करना है, क्या विचार है? अपनी डायरी में लिखो, एक सेकेंड अंदर चले जाओ और पूछो अपने आप से, बाबा जो बार बार कहते हैं कि बाप समान बनो, बाप समान बनो, हमारी इच्छा है कि हम जो हैं जैसे हैं ठीक है, हम पवित्र तो है, योगी तो हैं, सेवाधारी तो हम हैं, सहयोगी तो हम हैं, यही ठीक है या बाबा जैसा चाहते हैं इतना अपने आप को ऊंचा उठाना है? क्या इच्छा है? लिखो, मेरा लक्ष्य, मेरी इच्छा, अपनी डायरी में लिखो। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। मन चंगा तो गंगा। तो मेरा विचार, मेरी इच्छा क्या है? सब मुझे भट्टी में डाल रहे हैं, मधुबन में लाते हैं, पर मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा क्या है? जब तक मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे कोई नहीं बना सकता। मुझे बनना है, सारा चक्र। तो हम गृहस्थी में ही थे, एक ही तो जन्म है संगम का, योगी बनने का। इस एक जन्म में ही तो मौका है। और चक्र में, पूरे ड्रामा में 700 करोड़ तो अभी है, पता नहीं टोटल कितनी होगी, 700 साढ़े 700 जो भी होंगी, उन आत्माओं में नंबर वन श्रेष्ठ तपस्वी एक गृहस्थी बना, ब्रह्मा बाप। आश्चर्य की बात है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भई हम गृहस्थी हैं तो तपस्वी कैसे बने। अच्छा बने, पर इतने तो नहीं बन सकते ना। कई बार भाई बहन ऐसे कहते ना कि भाई दीदी आप लोग सेंटर में रहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते, ऐसे सोचते हैं ना कई बार। पर नहीं, तपस्वी बनने का आधार लगन है। सुविधाएं नहीं। चलो हम मधुबन निवासियों को सुविधा है योगी बनने की, है ना? शांत पवित्र है ना? बाबा का यज्ञ। पर मेरी लगन ना हो तो मैं बन नहीं सकती हूँ, चाहे मधुबन रहूं, सेंटर में रहूं। और लगन है तो घर में रहते भी बन सकती हूँ, गांव में पाठशाला में रह के भी बन सकती। इसलिए रोज अपने आप से पक्का कराने का, ज्ञान सत्य धारणाएं ऊंची। हमने दुनिया में कुछ और विशेष नहीं किया, जब से बाबा मिले तो हम सब का तो यही लक्ष्य हो गया ना, बाबा पढ़ाई सेवा। हमने दुनिया में कुछ ऐसा जलवा नहीं दिखाया, कुछ विशेष हम नहीं बने, क्योंकि हमने वो क्षेत्र छोड़ दिया है। आज दुनिया में आत्मा बल से नाम कमाने वाले कितने हैं ना, कोई बहुत अच्छी इंडस्ट्री बना के दिखाते हैं, कोई बहुत अच्छे पोजीशन पर जाते हैं, नेता अभिनेता खिलाड़ी बनते हैं ना, अपने फील्ड में नाम कमाते हैं ना आत्मबल से। हमने दुनिया में नहीं किया क्योंकि वो हमारा चॉइस नहीं, पर हमने जो हाथ पकड़ा भगवान का ज्ञान ध्यान, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या विशेष किया। चलो उसमें हमने कुछ नहीं किया पर इसमें तो कर सकते हैं ना, इसमें हमारी क्या विशेषता। बाबा कहते तुम्हारे चेहरे से, चलन से रूहानियत दिखे, अनुभव हो, प्राप्ति हो, आप में बाप दिखे, तो ये सब हमें करना है या दादियां करेगी कि हम सब करेंगे। हाँ देखो बहुत ढीला ढीला बोल रहे हैं, पंजाब पंजाब है भाई। हाँ नहीं अभी तो बोलेंगे ना, पढ़ाई है ये तो, बातचीत नहीं है। इसमें तो करना है ना हमें, बस रोज ऐसा मंथन करके लक्ष्य बना लो, फिर देखो आप कितना स्पीड से बनते जाएंगे। फिर और बात खींचेगी ही नहीं हमें। हमारी तपस्या कौन सी है, हमारा लक्ष्य तो बाबा ने दे दिया है, बाप समान बनना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये हमें सिद्ध करना है। भक्ति में हठ दमन करके सिद्धि पाते हैं ना, हमारी सिद्धि कौन सी है, ये है बाबा जैसा बनना, फरिश्ता बनना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, ये हमें सिद्ध करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना, कल्प पहले वाले हम ही देवता है वो प्रत्यक्ष करना, ये सिद्धि हमें पानी। पर उसके लिए तपस्या कौन सी, वह योग तपस्या भट्टी में हम है ना, तो तपस्या हमें कौन सी करनी, तो सबसे शुरुआत है देही अभिमानी स्थिति। देहभान भोग का द्वार है, आत्मभिमान योग का द्वार है। देहभान बुराइयों का मूल है, आत्मभान सद्गुणों का आधार है। बाबा कहते हैं देहभान से वैराग्य, सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने का वैराग्य नहीं, वो तो आ गया ना, तभी तो ब्राह्मण बने। लेकिन अब देहभान से वैराग्य, मुझे अच्छा न लगे देह भान में आना। भगवान इतना मुझे समझाते हैं, क्यों देह भान में मैं आती हूं? हमारे योग का पहला अभ्यास देह भान से न्यारा, और अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थित होना, ये हमारी रोज की प्रैक्टिस भी है। उसको निरंतर करना, इसलिए रोज ये अभ्यास चले, यही तपस्या है। जैसे वो हठ दमन की तपस्या करते हैं ना, कि एक हाथ ऊपर माना ऊपर, एक पांव पर खड़े रहना माना एक पांव पर, हम बार बार देह भान से डिटैच होते रहे। आत्मभिमानीता की तपस्या, उसी से रूहानियत आती है, उसी से आप एक साधारण मनुष्य से रूहानी बनते हैं, लौकिकता से अलौकिकता से, क्योंकि शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं। तो जितना देह भान में रहते हम लौकिक साधारण लगते, जितना हम आत्मभिमानी बनते उतनी रूहानियत, न्यारापन, अलौकिकता हमारे में आती, क्योंकि हम अंदर से अलग हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, पर मैं अलग हूं। दूसरी तपस्या है एक बाबा, दूसरा न कोई, अब और कोई में बुद्धि न जाए, अब मुझे किसी से आकर्षण नहीं, खींच नहीं, याद नहीं, पार्ट प्ले करना है, निमित्त जवाबदारी संभालनी है, संबंध निभाने हैं, हम सबसे मिलते हैं, बोलते हैं, सेवा करते हैं, पर हम हैं एक बाबा के। सारी जिंदगी दादियों ने सेवा की, हजारों से मिले, कितने स्थानों पर रहे, पर उनकी विशेषता ये है कि वे जीवन भर किसी के आकर्षण में नहीं है, वो एक बाबा के रहे। हम समझते हैं हमारी दादी, पर दादी तो एक
बाबा की, वो तो एक बाबा की है।
बाबा के सामने बैठते हैं वो तो बच्चे बन जाते हैं। बाबा की याद में बैठते हैं कछुए बन जाते, सब समेट जाता है। एक मेरा तो एक, दूसरा न कोई। कई दुखी होते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, माना मेरा कोई नहीं है, बस बाबा ही मेरा करके ये कह के भी रोते हैं। अरे ये तो खुशी की बात है, यही तो करना है, यही तो जीवन का सत्य है कि बाबा ही मेरा है, बाकी सब निमित्त मात्र है। जिसको एक बाबा है उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मेरा कोई नहीं है। जिसका बीज अपना है उनका तो पूरा वृक्ष अपना है ना। जिसने भगवान को हाथ कर लिया उसका तो सारा विश्व हाथ में आ गया। और ये सत्य है, समय पर बाबा अपने आप किसी से मदद भेजेगा, क्योंकि बाबा जवाबदार है ना। इसको बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर, एक बाबा, किसी में फंसना नहीं, अटकना नहीं। बाबा तो मेरा है ही, पर ये भी तो गलत। बाबा तो है ही पर ये भी मेरा बहुत नहीं, गलत है ना? बाबा को अपना बनाएंगे सब सहयोगी बने, ड्रामा भी फेवर में आएगा। आपको ड्रामा और विचित्र नहीं लगेगा, फेवर में लगेगा। हर परिस्थिति में कल्याण ही होगा, बाबा फेवर में है ना। ये जिगरी पक्का हो जाए, यही तो तपस्या। बुद्धि जाती है बार बार, पर बार बार हम अपने को समझाते हैं और सुधारते हैं। ये पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज आएगी जो और किसी में बुद्धि नहीं जाएगी। क्योंकि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो बाबा दे ही देता है किसी न किसी के द्वारा। ये तपस्या है। और कोई है बुद्धि में तो उससे न्यारा हो जाओ, खुद खुद को समझाओ। खुद खुद को समझाओ कि नहीं, पूरे ड्रामा में देहधारियों के हम बन के रहे, क्या रिजल्ट आए, है ना? अब एक जन्म भगवान का बनना है। समझाओ अपने आप, ये मेहनत यही तपस्या, लगे रहो। और मुझे कोई चलित न करे, हिला न सके, वो है शक्तिशाली तपस्या। कहते पूरे रावण के राज्य में, रावण की लंका में, रावण की अशोक वाटिका, रावण की सेना राक्षसियों के बीच एक सीता, और वो एक की याद में। ये किसका चित्र है? हमारा ही तो है। हा? सारी दुनिया रावण की, सब रावण के वश। हा? ये भी रावण की उत्पत्ति, विकारों से पैदा हुआ शरीर, उसके बीच मैं एक उसकी, है ना? कोई भी प्रभावित न करे मुझे। ज्ञानी अज्ञानी, लौकिक अलौकिक, कोई भी नहीं। ऐसे नहीं आसमान से गिरे खजूर में अटके, लौकिक से निकले, यहां किसी ने किसी को पकड़ लिया, नहीं। न्यारा और प्यारा, देहभान से न्यारा, बाबा का प्यारा, ये न्यारा और प्यारा। तीसरा प्रैक्टिकल तपस्या हमारी, ये दो विशेष तपस्या के अभ्यास और प्रैक्टिकल में इतना सेल्फ कंट्रोल, संयम, कि कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना। कर्मेंद्रिय से कोई भी मर्यादा श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, ये प्रैक्टिकल तपस्या है। कुछ भी हो जाए, जैसे कई बार होता है ना कि भाई मरने जीने का प्रश्न है, डॉक्टर कहता है आपको ये लहसुन प्याज लेना पड़ेगा, नहीं हम मर जाएं पर नहीं। कलयुगी डॉक्टर तो कलयुगी बात कहेगा ना। कुछ भी हो, हम जीते हैं तो भी शिव बाबा के हैं, उनकी सेवा में हैं, और हम जाएंगे तो भी उनके ही तो है और उनकी सेवा में जाएंगे ना। बाबा कहीं ना कहीं एडवांस में सेवा में ही भेजेगा ना, तो हमें क्या चिंता है, है ना? श्रीमत नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं, घड़ी घड़ी चलित हो जाना, फिर बनना, इसमें शक्ति नहीं भरेगी। चीज बार बार टूटे और जोड़े तो वो ताकत वाली रहेगी? हा? कोई प्रलोभन खींचे नहीं, कोई अवरोध अटकाए नहीं हमें। हमने जीवन में जो भी नियम मर्यादा श्रीमत धारण की है वो हमने सोच समझ कर ही की है। मुंझने की बात ही नहीं है। अब क्या करूं बाबा, अब क्या करूं, सवाल ही नहीं है। बाबा नहीं, मुरली में बताते हैं कि बच्चा पूछ रहा है कि बाबा क्या करूं, मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं, शादी करो शादी करो, क्या करो। बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए, वही तो रोज बाबा समझाता है, बाकी मुरली में समझाता क्या, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वही तो रोज समझाता हूं। फिर भी बच्चा पूछता है कि क्या करूं, माना जरूर करने की दिल है तब तो पूछ रहा है, तब तो पूछ रहा है। मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं खाने के लिए, पर पता है ना कि क्या करना है। दीदी से पूछूं, किसी से भी पूछने की बात नहीं, आपको करना है ना क्या करना है, बताया है ना बाबा ने। दृढ़ता, तपस्या उसको कहते हैं दृढ़ता से किया हुआ आत्मकल्याण का पुरुषार्थ, उसे तपस्या कहते हैं। वो परख शक्ति बाबा की मुरली से इतना सद्विवेक हम प्राप्त करें, हम परख सके कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, सच्चा ज्ञानी कौन है, योगी कौन है, ढोंगी कौन है, हम परख सके किसका संग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, परख सके। हम भ्रमित ना हो, चलित ना हो, ये है दृढ़ता। किसी की भी बात में, कोई भी पार्टी आ जाए हमारे सामने, मधुबन पार्टी, शंकर पार्टी, फलाना पार्टी, दुनिया में कितनी मनमत के ग्रुप है, हमारे में परख हूं सत्य क्या है, है? और अचल रहे, इसका नाम है शक्ति। और चौथी बात, यज्ञ की, यज्ञ माना समझते हो ना, हमारी ये संस्था, हमारा ये विद्यालय, हमारा ये संगठन, यज्ञ की व्यवस्था अनुसार चलना। बाबा का कार्य पूरी व्यवस्था से चल रहा है ना? ये मात्र सत्संग नहीं है ना? हेडक्वार्टर है, जोन हेडक्वार्टर है, सब जोन हेडक्वार्टर है, सेंटर हेडक्वार्टर है, टीचर हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, सारी व्यवस्था है ना ये। ताकि यज्ञ निर्विघ्न रहे, कुछ भी हो जाए, अपना अभिमान छोड़े, हम मनमत छोड़े, इच्छाओं का त्याग करें, भले हम कुछ समाए समझें, पर यज्ञ के वफादार हमारी चलन हो। प्रैक्टिकल परीक्षा वहां आती है कई बार, है ना? खुद के स्वार्थ, अभिमान, हट, जिद के कारण कई बार हम प्रैक्टिकल यज्ञ के वफादार नहीं रहते, छोटे मोटे विघ्न लाने के कारण बन जाते। नहीं, कुछ भी हो, हम बाबा के मददगार राइट हैंड्स है। हम बच्चे हैं, बच्चे तो मददगार होते। यज्ञ में विघ्न तो कौन डालते हैं? शास्त्रों में क्या गाया है? हम वो नहीं है, हम तो बच्चे हैं। प्रैक्टिकल कुछ भी हो, है ना, क्योंकि जब हम पुराने बन जाते हैं, जिम्मेवार बन जाते हैं, निमित्त बनते हैं, सर्विसेबल बनते, महारथी बनते, फिर ये सब माया आती है। जब तक छोटे हैं, नए हैं, तो बात नहीं, ये माया नहीं आती, पर सब आगे बढ़ने हैं। पर अगर हमारी पहली दो तपस्या, चार बात मैंने बताई, पहली दो तपस्या अगर मेरी व्यवस्थित है, तो बाकी दो ऑटोमेटिक धारणा में आ जाएगी। हम ज्ञानी हैं, सर्विस सेवाधारी हैं, हम धारणा युक्त हैं। अब समय अनुसार योगी बच्चे चाहिए, और अब वही सिर्फ हमारा बाकी है, विशेष है ना, बाकी ज्ञान में सब पावरफुल है। लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी से एक बात पूछो और आधा घंटा ज्ञान सुनने के लिए तैयार रहो, मौका मिलना चाहिए ज्ञान देने का, क्योंकि इतना भरा है ना, भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, तो ज्ञान में हम एक्सपर्ट हैं। धारणाएं सच में हमारी ऊंची, हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, शुद्धन खाते हैं, रोज हम ज्ञान ध्यान करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, ये हमारी सब धारणाएं बहुत ऊंची है। लोगों को जब कहते हैं कि 3:30 बजे उठने का गीत बजेगा, तो वो कहते 3:30 आधी रात को उठने का है, उनको तो बड़ा वंडर लगता है। पर बाबा के बच्चों ने भगवान को पहचाना, समय को पहचाना, सत्य को पहचाना, और दृढ़ता की, खुद के पीछे मेहनत की, और आज है इन नियम मर्यादाओं में, पक्के हैं आप बाबा के बच्चे। सेवा भी दिल से अथक करते हैं। लोग कहते हैं आपके जैसे कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है, वॉलंटियर्स नहीं है, सेवाधारी नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे सेवाधारी। आपको पता होगा ना, कई गुरु मां मंडलेश्वर जब यहाँ आते तो दादी को कहते कि दादी आपके पास है ना ऐसे 8-10 हमें भी दे दो, हमारा आश्रम भी अच्छा चलावे। भाई तुम्हारा आश्रम क्या, तुम्हारी रजाई दो तो भी नहीं आएंगे ये तो। पर वो समझते हैं कि आपके कितने अच्छे चलते हैं सब। अब अगर आवश्यक है तो हमें तपस्या को और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। अब उसकी आवश्यकता है क्योंकि अब आत्माओं को मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, हमसे प्राप्ति चाहिए। अब सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करे ऐसी हिम्मत वाली आत्माएं अब नहीं है। उनको तो है कि बस आप अनुभव कराओ, आप मेरा टेंशन मिटा दो, आप मेरे को, मैं ये भूल जाऊं, ऐसी मदद मांगते हैं मेरे को। मैं समझती हूं पर मुझे बार बार याद आता है, आप मेरे को दृष्टि दो, मैं ये भूल जाऊं, अब ऐसा मांगते हैं। अब मनसा सेवा का समय है, परिस्थितियां ऐसी है, आना जाना मुश्किल है, दुनिया का वातावरण कैसा है, तो याद ही सेफ्टी का साधन है। इसलिए तपस्या को शक्तिशाली बनाना, हमें एक दो से थोड़ा अंतर्मुखी बनना होगा, हमें ज्यादा रूहानी बनना होगा, हमें अभ्यास करना होगा। सेवा सहज है, एक दो से मिलना, देखना, सुनना, करना, तो वो सहज है। अंतर्मुखी माना डिटैच होना, गहराई में स्व में जाना, अकेला बनना, बल साथ में है पर मन को तो बनाना है ना सबसे ज्यादा। इसलिए बाबा ने कहा भी है ज्वालामुखी तपस्या करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, चेहरे और चलन से अनुभव कराओ, डबल लाइट, सब बातें बाबा ने कही है, वो अब प्रैक्टिकल हमें करनी। अब सिर्फ यही बाकी है, लास्ट बाकी बहुत कुछ बाबा के हम सब बच्चों ने किया है, अब ये लास्ट फिनिशिंग है। और जितना हम योगी बनते, बाबा की याद का अतीन्द्रिय सुख पाते, बाबा से हम जब चाहे मदद ले सके, इतना बाबा पर अधिकार कर सके, है ना। अधिकार ऐसे नहीं होता है, मदद ऐसे नहीं मिलती। जब आप इतने वफादार, कुर्बान और उन पर फिदा है तो ऑटोमेटिक मदद भी बाबा की मिलती है। जब ये अनुभूतियां पाते हैं ना, फिर छोटी मोटी बातें, इच्छाएं, फिर उसमें आप जाएंगे ही नहीं। फिर कोई समस्या नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई बात नहीं, कोई खिटपिट नहीं, टकराव नहीं, हम एक दूसरे से संतुष्ट, मन शांत, मन शांत। इच्छाएं हैं तो मन शांत नहीं है। जब प्राप्ति है, अनुभूति है, तो कोई इच्छा नहीं, आत्मा अंदर से भरपूर है। शुक्रिया, बाबा ने बहुत दिया है, हमारी हैसियत से भी ज्यादा दिया है, हमारी इतनी सेवा का इतना रिटर्न इस जन्म में दिया है, इतना बाबा ने हमें विशेष बनाया। इसलिए संतुष्टता, हमें कोई कंप्लेन नहीं है किसी के लिए। जब अंदर में संतुष्टता है, शांति ऑटोमेटिक होगी, फिर मन का भटकाव भी कम होगा, अवस्था भी काफी एकरस रहेगी और हम दे सके। तो सोचना, भट्टी आपकी शुरू हुई है, तीन चार दिन आप सब यहाँ हैं, गहराई से इन बातों पर सोच के अपना खास अपना प्लान बना के जाना। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी के लिए मन में कुछ भाव पैदा हो रहे हैं। दिल कोमल, चेहरे पर मधुर मुस्कान, मीठी जुबान, ज्ञान रत्नों की खान, कभी होती नहीं सेवा में थकान, आप हैं हमारे गीता दीदी जी महान, गीता दीदी जी महान। बहुत बहुत आभार है दीदी जी, बहुत प्यार से और बहुत शक्तिशाली अवस्था बनाने के लिए जो टिप्स आपने दिए हैं, जो विधियां आपने बताई हैं, और तपस्या किसे कहते हैं उसको करने की विधि, और योगियों की निशानी क्या है कि तपस्वी बन चुके हैं, तो बहुत अच्छा सा सबने समझ लिया है। मैं इन सबकी ओर से विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो मेहनत हम पर की है, इसका हम जरूर रिटर्न देंगे। धन्यवाद दीदी जी।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।